Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
और उन्होंने कहा कि इसीलिए मैं वेदांत को नहीं मानता हूं कि वो शंकराचार्य जी ने कहा या भगवान ने कहा या वेदों ने कहा. मैं वेदांत को इसलिए मानता हूं क्योंकि वो मेरी अनुभूति है. महाराज जी कहते हैं, यहां तक महाराज जी बोले, कोई दुनिया में चमत्कार हो या न हो, बोले सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि मैं ब्रह्म हूं. और बोले मेरे अलावा और कोई दुनिया में कुछ भी चीज नहीं है, अद्वैत है. माने वो तो ब्रह्म ज्ञान की घोषणा है. ये ठोक की है ना, ठोक की, ये ढुलमुलता नहीं है. इसलिए आपके शास्त्रों को देखना. आपके शास्त्र हर जगह पर एक निश्चयात्मक बोध प्रस्तुत करते हैं. सर्वम खलु, खलु माने निश्चय, माने वहां किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है. वहां कोई अवसर नहीं संदेह का कि वो है भी कि नहीं. आप वहां संदेह मत करो. सर्वम खलु निश्चय न ब्रह्म सिया राम मया सब जग जा. दुनिया में ऐसा दर्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा जो सर्वत्र आपको ब्रह्म सत्ता का प्रतिपादन करता. पंडिता समदर्शिन निर्दोषम ही समम ब्रह्म. निर्दोष है वो ब्रह्म और वो समदर्शी समत्व ब्रह्म का इनाम सम है. इसलिए आप समझ गए, आपने इसी शरीर में उस ब्रह्म सत्ता का अनुभव किया है और उस अवस्था में आपके पास जीवन है. आप जीवन में हैं, आप मन में हैं, आप तन में हैं, आप आंख में हैं, आप कान में हैं, आप विचारों में हैं. आपके पास जीवन है. जीवन का अर्थ क्या, यही तो है. इसलिए भगवान ने उस बात को स्पष्ट कर दिया. वो सारे श्लोक जो है ना जीवन मुक्ति का प्रतिपादन करने वाले. नवद्वारे पूरे देही, इस नवद्वार के पूरे शरीर में पूरे दोनों अर्थ लगा दीजिए इसको. संपूर्ण ये जो शरीर है ना नवद्वार वाला, और इसके अंदर वो ब्रह्मज्ञानी रहता है. रहता है और लेकिन रहता कैसे है, तो कहते हैं नैव किंचित करोमि इति. मैं कुछ भी करता नहीं हूं. इसलिए ज्ञानी और अज्ञानी में एक अंतर है. ज्ञानी करता हुआ भी अकर्ता होता है और अज्ञानी नहीं करता हुआ भी करता होता है. ज्ञानी करता हुआ भी, कितनी आश्चर्य की बात, ज्ञानी करता हुआ भी अकर्ता है और अज्ञानी, अरे वो करता हुआ तो करता है ही और नहीं करता हुआ भी वो करता है. हम टांग फंसा देते हैं, हम टांग अड़ा देते हैं, हम नहीं करते हुए कुछ ना कुछ करते रहते हैं. हम बैठे बैठे भी कुछ करते हैं, हम नहीं करते हुए भी कुछ करते हैं क्योंकि करने की बहुत आदत लग गई. हम बिना किए नहीं रह सकते. और ज्ञानी, इसलिए वो श्लोक इतने सुंदर है, जब हम बचपन में इसको याद करते तो बड़ा मजा आता था. पश्य श्रृणवन स्पृशय जिग्रहण, वो बहुत सुंदर है. माने वो आंख में होता हुआ भी आंख में नहीं है, कान में होता हुआ भी कान में नहीं है, वो वही वही देखता हुआ भी नहीं देखता, सुनता हुआ भी नहीं सुनता, चलता हुआ भी नहीं चलता, खाता हुआ भी. आश्चर्य की बात, भगवान श्री कृष्ण की देखो, ये उदाहरण बड़ा सुंदर है. भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी यदि रहूं तो ये यमुना मैया जगह दे, और यमुना मैया जगह देती है. और वही प्रकरण, मैं इसको संक्षेप में सुना रहा हूं, वही प्रकरण है जब दुर्वासा जी ने पूछा ये नदी पार करके तुम कैसे आई हो. बोले वैसे ही जाओ. उन्होंने कहा कि कृष्ण ने हमको कहा कि मैं बाल ब्रह्मचारी यदि रहूं तो ये मैया जगह दे. हंसने लगे दुर्वासा. और दुर्वासा ने कहा कि यदि मैं इतना खाने के बाद भी भूखा हूं तो जगह प्रदान करे. आप तो दृष्टांत सुने होंगे नहीं, क्या आश्चर्य. खाने वालों में सबसे ज्यादा खाने वालों में नाम है दुर्वासा का. और अभी अभी उन्होंने कम नहीं खाया, मनो खाया, मनो खूब खाया. और इतना खाने के बाद भी वो घोषणा कर रहे हैं कि मैं भूखा हूं. ऐसी कौन सी टेक्निक है, ऐसी कौन सी चीज होगी कि जो खाते हुए भी नहीं खाने का अनुभव। देखो यही है ब्रह्म ज्ञान। जहां पर आसक्ति होती है ना, वहीं पर हम होते हैं, और जहां आसक्ति नहीं होती है वहां पर हम, वहां कर्तृत्व नहीं है, वहां अकर्तृत्व अभोक्तृत्व सच्चित आनंद सर्वव्यापक चैतन्य सत्ता के साथ एक रूपता का अनुभव है। और शरीर में है लेकिन फिर भी शरीर में, इसलिए ज्ञानी कर्ता होता हुआ भी अकर्ता है, खाता हुआ भी नहीं खाता है, देखता हुआ भी वो नहीं देखता, माने वो जीवन मुक्त है, जीवन मुक्त है। और ऐसे जीवन मुक्त महापुरुषों को ही यहां ऋषि शब्द से कहा है। अब ध्यान दें, जो ऐसे श्रेष्ठ जो ब्रह्मज्ञानी वे ऋषि हैं, और उन ऋषियों की जो अनुभूति, ऋषियों की जो कृति है ना, वो अपौरुष है। आप ध्यान दें, ऐसा ब्रह्मज्ञानी महापुरुष जब कोई बात बोलेगा तो उस बात में कोई मानवीय दोष हो सकते हैं क्या? अरे वहां तो कोई आग्रह नहीं, वहां कोई दुराग्रह नहीं, वहां कोई शरीर की आसक्ति नहीं, दुनिया में कहीं पर भी कोई आसक्ति नहीं, और ऐसा ज्ञानी जब घोषणा करेगा तो वो घोषणा बहुत ऊंची होगी। और ये सारे जो आपके शास्त्र हैं ना, ऐसे ज्ञानियों की घोषणा है। अपौरुष है, माने पौरुष होते हुए भी, ऋषियों के द्वारा वो प्रणीत होते हुए भी वो क्या है? अपौरुष। तो आप मान लीजिए ये सारे जो वेद है ना, ये सभी ब्रह्मज्ञानियों की अनुभूतियां हैं। आप देखना उपनिषदों की भाषा, आप देखना, आप जितने भी उपनिषदें पढ़ते हैं ना, उसकी भाषा आप पढ़ना, अनुपम भाषा है। और भाषाओं से वेदों के मंत्रों को देखकर ऐसा लगता है कि ये जब बोल रहे होंगे तो शरीर में नहीं होंगे, वो शरीर में होते हुए भी वो शरीर से अलग थे, और उसमें किसी प्रकार भी पुरुषकृत दोष नहीं, भ्रम प्रमाद। अब कल गिना रहा था मैं, विप्रलिप्सा करना पाटव, क्योंकि दिव्य अनुभूतियां। और यही कारण है कि आपके वेद को अपौरुषेय कहा है, और इसी वेद का नाम आप श्रुति कहते हैं, इसी का नाम उपनिषद कहते हैं, या आप वेदांत श्रवण करते हैं, वेदांत ये भी शब्द बड़ा गहरा शब्द है। कर्म उपासना और ज्ञान ये कांड त्रयात्मक वेद हैं, और कांड त्रयात्मक वेद के अंतिम में ज्ञान है, और उस अंतिम ज्ञान को क्या कहा जाता है? वेदांत। वेदांत का पहला अर्थ है वेदस्य अंतः इति वेदांत, वेद का जो अंत है उसको वेदांत कहते हैं, अथवा वेदस्य अंतो परम तात्पर्यम इति वेदांत। वेद का अंत माने परम तात्पर्य, तात्पर्य वेद का ज्ञान में है, कर्म का तात्पर्य भी ज्ञान में है, उपासना का तात्पर्य भी ज्ञान में है, इसलिए वेदांत। और एक वेदांत का एक आपको दूसरा अर्थ बता देते, वेदांत का अर्थ होता है जहां वेद का अंत हो जाए, वेदांत का अर्थ होता है जहां वेद का भी अंत हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? वेदांत। आप इस बात को ध्यान से सुनेंगे, वेद क्या है, आपकी साधना की पूर्णता क्या है, साधन और साधन राहित्य का परित्याग करना ही आपकी साधना की पूर्णता है। पहला सूत्र हमारे जीवन में साधन युक्ति, और दूसरा सूत्र है साधन मुक्ति। पहला सूत्र है साधन राहित्य का परित्याग, और दूसरा सूत्र है साधन का परित्याग। आप इसको दृष्टांत में समझ लें, जैसे आपको नाव में बैठ करके नदी को पार करना है, तो उस समय आपके जीवन का पहला ध्येय क्या होता है? आपका पहला ध्येय होता है नाव कहां है, आप नाव ढूंढते हैं, क्योंकि आप साधन रहित हैं, आप साधन रहित हैं, और आपको साधन राहित्य का परित्याग करना है, छोड़ना है। आप साधन राहित्य का परित्याग कैसे करेंगे? नाव मिली, आप नाव में बैठ गए, तो आपने पहला जो स्टेज था ना उसको आपने पार कर लिया, साधन राहित्य का आपने परित्याग कर, आप साधन रहित नहीं रहे, अब आप साधन वान हो गए। आपको उस किनारे जाना है तो पहला सूत्र है आप साधनवान बनो। अब आप नाव में बैठ गए, आप साधनवान बने, साधन राहित्य का परित्याग कर दिया, अब आप उस किनारे पहुंचेंगे कि नहीं? नहीं पहुंचेंगे। केवल नाव में बैठने से थोड़ी पहुंचता है आदमी। आप नाव चला लेंगे तो आप नाव चलाएंगे तो उस पार पहुंचेंगे कि नहीं? नहीं पहुंचेंगे। नाव में जो रस्सी बंधी है ना, उसको खोलना पड़ेगा। आपने सुना है, एक आदमी था बनारस का, और वो नाव में बैठ गया, भांग की नशा में था, नाव में बैठा, रात में बैठा 10 बजे, और रात भर नाव चलाता रहा, और जब सुबह हुई कहा वही था। क्यों? नाव तो चला रहा था लेकिन रस्सी बंधी हुई थी किनारे पर। आपकी नाव आगे नहीं बढ़ेगी। आपको नाव को यदि आगे बढ़ना है तो नाव को खेने के साथ साथ जो किनारे की रस्सी है उसको आपको खोलना पड़ेगा। ये संसार है, ये आपको मंत्र मिला, आपको सत्संग मिला, आपको गुरु मिले, आपको वेद मिला, आपको सारी चीजें मिली, और आप बैठ गए नाव में, साधना की नाव में आप बैठ गए हैं। आपने साधन राहित्य का परित्याग कर दिया, प्रथम स्टेज आपने पार कर लिया है। आप मंत्र जप रहे हैं लेकिन आसक्ति, आसक्ति की रस्सी बंधी हुई है, डोर आपको खींचती है। आप सत्संग में आना चाहते लेकिन आ नहीं पा रहे क्योंकि वो आसक्ति की डोर खींच नहीं है। आप जप कर रहे हैं लेकिन आपका मन नहीं लग रहा है, आसक्ति की डोर, कहीं बेटा याद आता है, कभी बहू याद आती है, कभी धारावाहिक की याद आते हैं, कई अतीत के बहुत पुरानी पुरानी बातें याद आती हैं। हमारा अतीत हमको खींचता है, हमारा भविष्य हमको खींचता है, कभी वर्तमान खींचता है। ये आसक्ति की डोर है जो किनारे पर बंधी है, और वो उस किनारे पर, संसार के किनारे पर हमको बांध के रखती है। इसलिए आपको आगे बढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? वो नाव के किनारे पर जो बंधी हुई रस्सी है उसको खोलना पड़ेगा। अब आप आगे बढ़ोगे कि किनारे पर पहुंचेंगे कि नहीं? हाँ पक्का। हाँ लेकिन सही चलाना पड़ेगा। आपको बैलेंस से चलाना पड़ेगा। नाव चलाना बड़ा कठिन है। जब हम बनारस में पढ़ते थे एक बार 5-6 महात्मा हम लोग मिले, और नाविक को जाके बोला भैया हमको उस पार जाना है, तो उन्होंने कहा महाराज हमको काम है, अब हम तो आपको नहीं ले जा सकते। हमने कहा हमको नाव दे दो। बोले ले जाओ। वहां के तो बड़े अच्छे होते हैं नाविक लोग, बड़े महात्माओं से सेवा करते हैं। ले जाओ, दिखा दी नाव। अब नाव में बैठे हम लोग और नाव अब वही घूम रही थी। वो वही घूम रही, वही घूम रही है। वो भागा भागा आया और हंसने लगा। अरे बोले आप नाव नहीं चल ले जा पाओगे क्योंकि यहां चलाने के लिए बैलेंस चाहिए। थोड़ा सा भी यदि अनबैलेंस हुआ ना तो आपकी नाव घूम जाएगी, वहीं घूम जाएगी। आप जब कर रहे हैं लेकिन तरीका, शास्त्र आपको तरीका बताता है, आपको श्रवण करने का तरीका बताता है, आपको मनन करने का, निधिध्यासन करने का तरीका बताता है। ये सारे लक्षण आपको बताए जाते हैं। श्रवण किसको बोलते हैं, मनन किसको बोलते हैं, क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको उसका तरीका, क्योंकि हम क्या करते हैं ये बात महत्वपूर्ण नहीं होती है, हम किस तरीके से करती हैं ना वो बात महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि तरीका ही हमको महत्वपूर्ण बनाता है। आप बना लो, आप कर लो, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप तरीके से कर रहे कि नहीं, तरीका ही आपके काम को महत्वपूर्ण बनाता है। आप चावल बनाते हैं, आप चाय बनाते हैं, और तरीका ना हो तो आदमी बोलता भी है यार वो करता तो है लेकिन उसको तरीका नहीं आता है। तो शास्त्र आपको तरीका सिखाता है, जप करो, ऐसा जप करो। आप परम पूज्य महाराज श्री के ग्रंथों को कृष्ण कृष्ण कहता कृष्ण प्राप्ति, वहां आप देखना महाराज श्री ने बताया कि आपको मंत्र का जप कैसे करना चाहिए। तद जपस तदर्थ भावना, आपको मंत्र, गुरु, साधना, सत्संग सारी चीजें मिली हुई हैं, लेकिन उसको हमें तरीके से करना है, तरीके से। और आश्चर्य की बात, हम सारी चीजें तरीके से करते हैं लेकिन अध्यात्म ही एक ऐसा है जो बिना तरीके से करके हम फल को पाना चाहते हैं। आप देखना हर चीज संसार की हम तरीके से करते हैं। झाड़ू भी लगाते हैं तो हम तरीके से लगाते हैं, कहीं कचरा न छूट जाए। हम हर चीज मेंटेन रखते हैं तरीके से, लेकिन हम अपने आप को अंदर की भावनाओं को मेंटेन नहीं रख पाते। अंदर बहुत सारा कचरा पड़ा रहता है, कहां हम साफ कर पाते हैं। इसीलिए आप नाव चला रहे हैं, लेकिन आप नाव को बिल्कुल व्यवस्थित रूप से चलाना पड़ेगा, तब आप उस किनारे पहुंच गए। अब आप पहुंच गए, आप उस किनारे पहुंच गए कि नहीं? अभी आप नहीं पहुंचे, अभी आप नाव में बैठे हैं ना, आप नाव में बैठे हैं, अब आप किनारे तक नहीं पहुंचे हैं। आप किनारे पर खड़े हैं, नाव किनारे पर खड़ी है, आप उस पार पहुंचे क्या? देखो पहला सूत्र पूरा हुआ, अभी आपका साधन राहित्य का परित्याग किया है, लेकिन अब अंतिम जो दूसरा सूत्र है वो साधन का भी परित्याग करना पड़ेगा। जिस नाव में बैठे हैं, यदि नाव में आपका मोह हो, नाव के प्रति आसक्ति हो, आप कहेंगे नहीं भैया जिस नाव ने हमको उस पार किया उस नाव को हम नहीं छोड़ेंगे। आप उस नाव को नहीं छोड़ोगे तो आप कभी उस किनारे पहुंच नहीं सकते। और यही रहस्य भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। आपका ये श्लोक यहां पर लग जाता है। भगवान कहते हैं अर्जुन को, यदि अर्जुन को नहीं कहना होता भगवान को, भगवान को उपदेश करना होता जन सामान्य लोगों को, तो भगवान कभी नहीं बोलते सर्वधर्मान परित्यज्य। भगवान कहते सर्वान अधर्मान परित्यज्य, ऐसा बोलते, क्योंकि अधर्म का परित्याग उस आदमी के लिए कहना पड़ता है जिसके पास अधर्म है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लिए कह रहे हैं, क्योंकि उसके जीवन में कोई अधर्म है ही नहीं है। अर्जुन के लिए अधर्म छोड़ने का निर्देश संभव नहीं, वह नैतिकता का क्या उपदेश करेंगे, वह नैतिकता ठूस ठूस की भरी पड़ी है। अधर्म का परित्याग पूर्वक स्वधर्म का श्रेष्ठ आचरण अर्जुन के जीवन में है। वह नाव में बैठा है, किनारे पर है, भगवान बिल्कुल सामने है, लेकिन अभी कहां बैठा है अर्जुन? कौन सी नाव में? धर्म की नाव में बैठा है। अभी वो धर्म से बंधा है, धर्म तो साधन है ना। आपको एक मंजिल की परिभाषा बता देते, मंजिल किसको कहते हैं? जहां रास्ता समाप्त हो जाता है ना उसको मंजिल बोलते हैं, ये मंजिल की परिभाषा है। जहां रास्ता समाप्त हो जाए उसको क्या बोलते हैं? अच्छा अभी रास्ता बाकी हो तो उसको आप थोड़ी मंजिल बोलते हैं। आपके घर की परिभाषा में बता देता हूं, आपका घर किराए वाले का नहीं, या आप होटल में कहीं रुके उसको भी, आपके घर की परिभाषा क्या है? दुनिया के रास्ते जहां आके मिल जाते हैं वही आपका घर है। आप अमेरिका में गए हैं, आपके पास फोन आया, आप कहां हैं? आप क्या बोलेंगे? भैया रास्ते में। आप आए एयरपोर्ट आए, फोन आया, आप कहां हैं? कहां हैं? रास्ते में। बिल्कुल आप घर के दरवाजे तक पहुंचे, आप कहां हैं? रास्ते में। और जैसे दरवाजे के अंदर घुस गए, अब आप बोलोगे कि अब रास्ता खत्म हो गया। मंजिल का अर्थ ही है जहां पर रास्ता खत्म हो जाए। आपका मोक्ष, आपका जिसको आप मोक्ष बोलते हैं ना, परमात्मा, परमात्मा आपकी मंजिल है। भगवान ही कहते हैं जहां रास्ता है, ये धर्म आपका रास्ता है, रास्ता खत्म है, इसके आगे रास्ता नहीं है। परमात्मा तक रास्ता जाता है और उसके बाद रास्ता खत्म हो जाता है। और परमात्मा तक पहुंचने के बाद भी कोई रास्ता निकलता हो तो भैया आने का रास्ता ही नहीं हुआ, जाने का ही रास्ता। यद गत्वा न निवर्तन्ते, भगवान कहते जिसको जाके आदमी वापस नहीं आता है उसको क्या बोलते है? मेरा धाम, वो मोक्ष है। इसलिए परमात्मा में जाने का रास्ता है लेकिन आने का रास्ता नहीं है। वो ऐसा है जैसे मानो सीढ़ी बन गई और सीढ़ी उतार ली। इसलिए भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य माने धर्म अंतिम साधन है। नाव में बैठा है अर्जुन, और जब भगवान कह रहे होंगे तो दोनों हाथ फैला के बोले मामे कम, ऐसा बोल रहे होंगे, आओ आओ, अरे तुम कौन सी धर्म की नैया में बंधे हुए हो? अब तुम धर्म का सम्यक अनुष्ठान कर चुके हो, ये धर्म साधन है, अब अंतिम साधन, इसका भी क्या करो? परित्याग करो और तुम एक मेरी शरण में आयो। मेरी शरण माने अपने मंजिल को पालो, किनारे को पाल, इसी का तो नाम वेदांत है। इसी का तो नाम वेदांत है। ये वेद जो है ना साधन है, हाँ ये वेद आपका साधन है, आत्मसत्ता तक पहुंचाने के प्रति साधन है, और आत्मसत्ता तक पहुंचाने के बाद तत्र वेदा अवेदा भवन्ति। आपको आत्मज्ञान होने के बाद फिर वेद रहते हैं कि नहीं? भैया वेद नहीं रहते का अर्थ होता है वहां अब वेद आपके लिए कोई रास्ता नहीं है, वेद का वहां पर अभी कोई विधान आपके लिए नहीं। मैं आपको इसको बहुत गहरी वेदांत की प्रक्रिया में जाके इसको आपको समझा देते हैं, थोड़ा मन एकाग्र करेंगे आप। अद्वैत सिद्धि में एक दृष्टांत दिया है, कतो रजत न्याय। जैसे पानी जब गंदा होता है ना, जब हम लोग ऋषिकेश में रहते थे गंगा किनारे, और चातुर्मास के समय पानी बहुत गंदा होता था, तो हम क्या करते थे? फिटकरी मिला देते थे। तो आपको मैं पूछता हूं, वो फिटकरी क्या है? फिटकरी गंदगी है कि नहीं? फिटकरी भी तो गंदगी है, लेकिन एक गंदगी क्या करती है? दूसरे गंदगी को काट देती है, और वो भी जाके नीचे बैठ जाती है। वहां दृष्टांत दिया है, वो फिटकरी क्या करती? फिटकरी के कण उस गंदगी को सबको लेकर के स्वयं भी नीचे बैठ जाते हैं। एक दूसरा दृष्टांत आपको आधुनिक दृष्टांत देते हैं, जैसे गोली दूसरे को कोई मार देता है तो वो गोली बची रहती क्या? गोली दूसरे को मार के स्वयं मर जाती है कि बची रहती है? मर जाती है, दूसरे को गोली लग जाती है, गोली भी खत्म हो जाती है। ये आपका जो ब्रह्मज्ञान है ना, वो ऐसे ही है। आपका जो ब्रह्मज्ञान है वो अज्ञान को काटने के बाद स्वयं भी कट जाता। रात दिन भर बैठ के माला जपोगे क्या कि अहम ब्रह्मास्मि? क्योंकि ज्ञान अज्ञान को काट देता है, और उसके बाद वो वृत्ति नहीं रहती, वृत्ति स्वरूप में लीन हो जाती है। इसलिए ब्रह्मवेत ब्रह्मैव भवति, ये बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म ज्ञानी क्या होता है? ब्रह्म ही होता है, माने ब्रह्म हो गया, ब्रह्म हो गया। अब वहां ब्रह्म ज्ञानी नहीं, यदि ब्रह्म ज्ञानी होगा ना तो वहां पर द्वैत आएगा, ये अज्ञान सापेक्ष होगा, इसलिए ब्रह्म है वह। ब्रह्म ज्ञानी अब क्या हो गया है? ब्रह्म, क्योंकि अज्ञान मिट गया है, जो उसको अलग करने वाली चीज थी वो ज्ञान के द्वारा, ये ज्ञान वेद, वेद का मतलब होता है जाना हुआ, वेद वेदांत, ये वेद शब्द का अर्थ होता है वेद, वेदतु वेदुहु, ये आपके संस्कृत में श्लोक शब्द बनते हैं। आपके जीवन में आप जो भी जानी हुई चीज है ना, एकम विज्ञान है ना सर्वम विज्ञातम होती, अब आपको कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता है। इसीलिए श्रुति ने कहा तत्र वेदा अवेदा भवंती, ये शास्त्र ये वेद ये मार्ग रूप है, और ये मार्ग रूप वेद वहां मंजिल में परमात्मा में आत्मसत्ता में जाने के बाद वह अवेदा भवंती, और इसी का नाम वेदांत है। जहां आत्मसत्ता में आत्मसत्ता की अनुभूति में प्रवेश करने के बाद जहां वेद भी वेद नहीं रहते हैं वही वेदांत है। दुनिया में ये सिद्धांत कोई नहीं देता है। आप कितने भी ऊंचे पहुंचेंगे तो कुरान से ऊंचे नहीं पहुंच सकते, आप कितना भी ऊंचे पहुंचेंगे तो पैगंबर के ऊपर नहीं पहुंच सकते, आप कितना भी ऊपर पहुंचे तो आप खुदा के ऊपर पहुंच सकते क्या? नहीं। लेकिन आपका जो वेदांत है ना, ये सबके ऊपर आपको पहुंचा देता है, क्योंकि कहता है कि आप वही हैं। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत, एक बार एक कोई साधु थे, और वो सोचे कि ये मेरा अकेलापन मैं दूर करूंगा। अब अकेलापन दूर करना है तो संसार की चीजों से तो नहीं कर सकते, वैराग्य था। उन्होंने सोचा कि अकेलापन तो है, अब मैं परमात्मा को मिलूंगा, और परमात्मा को मिल करके मैं अपने अकेलेपन को मिला खत्म कर दूंगा। ढूंढा, खूब साधना की और परमात्मा मिले, और वहां जाने के बाद उनको मालूम पड़ा कि परमात्मा भी अकेले, समझ गए? वहां जाने के बाद मालूम पड़ा कि उनके जाने के बाद भी परमात्मा क्या है? क्यों? वहां द्वैत नहीं, क्योंकि वहां जाने के बाद हर कोई क्या बन जाता है? परमात्मा बन जाता है, एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म। हाँ, माने आपको सर्वोच्च जो चीज है, सर्वोच्च जो चीज ब्रह्म, वहां पर आपको पहुंचाया जाता है। आपको शास्त्र का किंकर्य, आप में शास्त्र की दास्ता, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की गुलामी नहीं रहती, सारी गुलामियां खत्म, तभी तो आप जीवन मुक्त होंगे, तभी तो आप मुक्त हैं। आप एक भी चीज से यदि बंधे हैं तो अभी आप मुक्त कहां हैं? आप शास्त्र से भी बंधे हैं, आप वेद से बंधे हैं, आप ईश्वर से भी बंधे हैं, तो फिर आप मुक्त नहीं है। इसलिए मोक्ष की चरम अवस्था में सर्वमुक्ति है, इसे निरंकुश तृप्ति बोलते हैं ना, वहां कोई परम स्वतंत्रता। इसलिए आपका जो वेदांत है वो आपके संपूर्ण जीवन की कमियों को दूर कर एक श्रेष्ठ तत्व में प्रवेश दिलाती है, और अंत में ये वेदांत की सारी प्रक्रिया ये परमात्मा में जाके विलीन हो जाती है। अब वहां कोई साधन नहीं, सारे मार्ग खत्म हो जाते हैं, उसी को वेदांत कहते हैं।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।